एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम 20वीं सदी की अमेरिकी कविता की एक ऐसी आवाज पर बात करने वाले हैं जिसे अनदेखा करना आप कह सकते हैं नामुमकिन है, सिल्विया प्लाथ। और उनका वो बेहद चर्चित और उतना ही शक्तिशाली काव्य संग्रह है, एरियल।
हाँ, एरियल। पर शुरू में ही ये साफ कर देना जरूरी है ना कि ये कोई नॉवल नहीं है।
बिल्कुल, प्लाथ का एकमात्र नॉवल तो द बेल जार था, एरियल कविताओं का संग्रह है, पोएम्स हैं इसमें।
लेकिन पोएम्स होते हुए भी इसमें एक अंदरूनी कहानी सी चलती है, एक मनोवैज्ञानिक सफर है, वो साफ दिखता है।
हाँ, और ये सफर कोई आसान सफर नहीं है। सिल्विया प्लाथ मतलब 1932 से 1963 तक वो उस कन्फेशनल काव्यधारा की शायद सबसे जानी मानी आवाजों में से है।
कन्फेशनल यानी एक तरह से अपनी मन की बात कहना, स्वीकार करना।
हाँ, संवादात्मक कह सकते हैं, सीधी बेबाक शैली जिसमें कवि अपने बहुत ही निजी, अक्सर तकलीफ दे अनुभव, अपनी मानसिक उथल पुथल,
यहाँ तक कि वो बातें भी जिन्हें समाज में टैबू माना जाता है, वर्जित समझा जाता है।
बिल्कुल, उन सबको बिना किसी लाग लपेट के कविता में ढाल देते हैं।
जैसे दिल खोल के रख दिया हो, पर उसमें भी एक कमाल की कलात्मकता होती है, ऐसा नहीं कि बस डायरी लिख दी।
सही कहा, और ये समझना भी जरूरी है कि प्लाथ किस माहौल में लिख रही थी, वो दौर कौन सा था।
ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद का अमेरिका था,
जहां मर्दों और औरतों के लिए जो भूमिकाएं थीं वो बहुत बहुत सख्त थीं, तयशुदा।
हाँ बिल्कुल, और प्लैट पढ़ी लिखी थी, स्मिथ कॉलेज, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी,
जहां उनकी मुलाकात हुई अंग्रेज कवि टेड ह्यूज से, जिनसे उन्होंने शादी भी की।
लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी, लगातार डिप्रेशन से जूझना, माँ बनने के मुश्किल अनुभव,
और समाज के जो बने बनाए ढांचे थे उनके खिलाफ एक कश्मकश चलती रही।
और एरियल का तो खास संदर्भ और भी ज्यादा नाटकीय है।
हाँ, क्योंकि ये कविताएं प्लैथ ने अपने जीवन के बिल्कुल आखिरी महीनों में लिखी,
जब वो टेड ह्यूज से अलग हो चुकी थी। कहते हैं उस वक्त उनमें रचनात्मक ऊर्जा का जैसे जैसे कोई विस्फोट हुआ था।
और ये संग्रह छपा उनकी मौत के 2 साल बाद 1965 में।
और यहीं पे वो बात आती है, वो विवाद।
हाँ, कि जो पहला एडिशन आया उसे टेड ह्यूज ने एडिट किया था,
और उन्होंने सिर्फ कविताओं का क्रम ही नहीं बदला
बल्कि कुछ बेहद तीखी, शायद ज्यादा तकलीफ दे कविताएं हटा भी दी,
जिसका नतीजा ये हुआ कि कई दशकों तक पढ़ने वालों को प्लैथ की कविताएं का वो पूरा रूप, वो शायद ज्यादा कच्चा बेचैन करने वाला रूप देखने कोई नहीं मिला
जो वो खुद चाहती थी दिखाना।
हाँ बिल्कुल, फिर काफी बाद में 2004 में रिस्टोर्ड एडिशन आया,
जिसमें प्लैथ का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसे वापस लाया गया,
और वो क्रम अपने आप में कहानी कहता है, अंधेरे से, घुटन और पीड़ा से शुरू होकर
एक तरह के भयानक पुनर्जन्म की तरफ, या कहें कि आत्मविनाश के जरिए मुक्ति की तरफ।
हाँ, कुछ ऐसा ही। और छपते ही एरियल को आलोचकों ने तो हाथों हाथ लिया था, और इसे फेमिनिस्ट लिटरेचर का एक मील का पत्थर माना गया।
तो आज हम इसी संग्रह की गहराई में उतरेंगे, इसकी जो ये साइकोलॉजिकल जर्नी है, जो मुख्य विषय है, वो कौन सी छवियां हैं जो एकदम जहन में अटक जाती हैं,
और प्लाथ की वो अनोखी शैली क्या है उसमें ऐसा खास।
हाँ, तो शुरू करते हैं इसके केंद्रीय आधार से, इस संग्रह का दिल क्या है, मतलब क्या कहना चाह रही हैं प्लाथ।
मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये बदलाव की कहानी है, एक रूपांतरण,
ट्रांसफॉर्मेशन।
शुरुआत कहाँ से होती है?
शुरुआत होती है एक फंसे हुए होने के एहसास से, शादी टूटने के बाद, जैसे दम घुट रहा हो, धोखा खाने का दर्द, गहरा मानसिक क्लेश,
और मर्दों का साया, पिता पति, वो एक बोझ की तरह महसूस होते हैं।
हाँ बिल्कुल, और इसी फसाव से निकलने की जो जद्दोजहद है वही इसका केंद्रीय संघर्ष है।
पहचान की तलाश, आजादी की छटपटाहट।
हाँ।
है ना। हाँ, और सवाल ये उठता है कि जब आपका स्व, आपकी आइडेंटिटी बिखर जाए तो उसे दोबारा कैसे गढ़ा जाए।
क्या मुक्ति सब कुछ नया बनाने में है, या पुराने को पूरी तरह मिटा देने में, ये एक बड़ा सवाल है।
हाँ, और ये कविता है जैसे जैसे पुरानी खाल उतार फेंकने का ऐलान है।
वो अच्छी बेटी, प्यारी बीवी, आदर्श माँ वाली भूमिकाएं।
हाँ, जिन्हें समाज औरतों पर लादता है उन्हें उतार फेंक कर एक ज्यादा असली, ज्यादा ताकतवर, और हाँ कई बार डरावने लगने वाले स्व को ढूंढ निकालने की कोशिश।
दिलचस्प बात ये भी है कि इन कविताओं का जो कैनवस है वो सिर्फ घर की चार दीवारी तक नहीं है।
नहीं बिल्कुल नहीं, बात शुरू होती है रसोई से, बच्चों के कमरे से, लेकिन फौरन फैलकर सितारों और मिथकों तक पहुंच जाती है।
रोजमर्रा के काम, जैसे मधुमक्खी पालना
या बच्चे को दूध पिलाना, वो अचानक जैसे जिंदगी और मौत, सृजन और विनाश की बड़ी बड़ी लड़ाइयां जैसे बन जाते हैं, महाकाव्य जैसे।
और मुख्य किरदार?
वो कवयित्री की अपनी आवाज है जो एक जबरदस्त दिमागी और जज्बाती तूफान से गुजर रही है।
तो ये आवाज है कैसी, इसका सफर उसे कैसे समझे?
ये आवाज तेज है, साफ बोलने वाली है, जख्मी है, लेकिन बेहद संवेदनशील भी।
और उसमें गजब की कल्पना शक्ति है।
हाँ, वो अपने दर्द को भी मिथक बना देती है। और उसकी सबसे बड़ी तड़प क्या है? प्रामाणिक होना, असली होना और इस दिमागी कैद से आजाद होना।
इसका जो इमोशनल आर्क है, उतार चढ़ाव, वो कैसा है?
शुरुआत होती है एक तरह की सुन्नता से, नमनेस, जैसे वो जिंदा होकर भी मुर्दा हो, जीवित मृत कह सकते हैं।
फिर टकराव आता है,
एल्मोवाजा। हाँ, फिर वो अपने जख्मों से टकराती है, खासकर डैडी और लेडी लैजरस जैसी कविताओं में। वो पिता और पति से जुड़े मिथकों को तोड़ती है।
और फिर?
फिर एक उन्माद का दौर आता है, उड़ान का, बदलाव का। एरियल, स्टिंग्स जैसी कविताएं इसी की हैं। वो बाहरी पहचानों को एक एक कर उतार फेंकती है।
और अंत?
अंत थोड़ा धुंधला है। क्या ये पूरी तरह नया जन्म है या फिर पूरी तरह बिखर जाना, कहना मुश्किल है, अस्पष्ट है।
ये जो बदलाव है, शिकार से शक्तिशाली बनने तक का, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है।
हाँ, कभी वो फिनिक्स लगती है राख से उठती हुई, कभी बदला लेने वाली देवी, कभी रानी मधुमक्खी।
तो क्या इसे हम मनोवैज्ञानिक उपचार की प्रक्रिया कह सकते हैं, या ये एक खतरनाक भ्रम है जहां सशक्तिकरण और विनाश एक ही चीज बन जाते हैं?
ये सवाल बहुत अहम है और शायद इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। ये सिर्फ प्लैथ की निजी कहानी नहीं रह जाती,
बल्कि ये किसी भी रचनात्मक स्त्री के चरम अनुभव का, उसकी अंदरूनी लड़ाई का प्रतीक बन जाती हैं।
बिल्कुल, एक तरह का आर्किटाइप।
इस दुनिया में, इस लड़ाई में विरोधी कौन है,
विलन कौन है?
वो ताकतें जिनसे कवित्री टकरा रही है।
बाहरी तौर पर देखें तो मुख्य रूप से पुरुष आकृतियां, पिता, पति, यहां तक कि डॉक्टर भी,
ये सब कहीं ना कहीं पितृसत्ता के प्रतीक बन जाते हैं,
मर्दों की सत्ता के,
हाँ, जो औरत को काबू में रखना चाहती हैं।
लेकिन अंदरूनी दुश्मन भी कम नहीं है।
जैसे
उसका अपना अवसाद, आत्मसंदेह और समाज की नजरों में स्वीकार्य या अच्छी औरत बने रहने की वो इच्छा, जिसे मारना उसे जरूरी लगता है।
पिता का जिक्र आपने किया, खासकर डैडी कविता, वो बहुत ताकतवर और विवादित कविता भी है।
हाँ, बहुत। ये प्लाथ के अपने पिता ओटो प्लाथ पर आधारित है, जिनकी मौत तब हो गई थी जब वो सिर्फ 8 साल की थी।
कविता में वो एक दैत्य जैसे बन जाते हैं, एक मिथकीय अत्याचारी।
हाँ, कभी विशालकाय, कभी नाजी, कभी पिशाच। वो उस परम सत्ता के प्रतीक है जिससे प्यार भी है और खौफ भी।
और कविता के आखिर में वो जो कहती हैं, डैडी डैडी यू बास्टर्ड आई एम थ्रू।
हाँ, डैडी डैडी कमीने, मेरा तुमसे हो गया। ये जैसे दिमागी आजादी का एक चीखता हुआ ऐलान है, एक कैथार्सिस।
और पति का किरदार, जिसे टेड ह्यूज का अक्स माना जाता है,
वो भी बहुत जटिल है। वो गहरे प्यार का स्रोत है, रचनात्मक प्रेरणा का स्रोत है,
लेकिन आखिर में भयानक धोखे और दर्द का भी।
हाँ, वो कविताओं में अलग अलग रूपों में आता है, कभी मधुमक्खी पालने वाला, कभी काले कपड़ों वाला आदमी।
वो प्रकृति की ताकत से जुड़ा है, उसकी बेरहम जिंदा दिली से।
हाँ, और द एप्लिकेंट जैसी कविताओं में वो शादी की संस्था का भी प्रतीक है, वो संस्था जो औरत को एक वस्तु की तरह देखती है।
और माना जाता है कि ह्यूज से मिले धोखे ने ही एरियल की इस विस्फोटक ऊर्जा को चिंगारी दी थी।
हाँ, वो तात्कालिक उत्प्रेरक था, इमीडिएट ट्रिगर।
इन भारी भरकम पुरुष किरदारों के सामने बच्चे एक अलग तरह की मौजूदगी रखते हैं।
बिल्कुल, वो कवयित्री की जो अपनी तबाही की तरफ खींचती प्रवृत्ति है, उसके सामने जैसे एक नर्म ताकत है।
मासूमियत, सादगी भरा प्यार, जिंदगी की निशानी।
हाँ, मॉर्निंग सॉन्ग या निक एंड द कैंडलस्टिक में ये दिखता है, लेकिन वो एक तनाव भी पैदा करते हैं।
कैसे?
एक तरफ वो जिंदगी से जोड़ने वाले छोटे हुक हैं, दूसरी तरफ कवयित्री में सब कुछ भुला देने की, विस्मृति की चाहत है।
तो ये टकराव कविताओं को एक दर्द भरी गहराई देता है।
बहुत मार्मिक।
अगर हम प्लाथ के तय किए क्रम से देखें, जो रिस्टोर्ड एडिशन में है, तो इन कविताओं के विषयों में एक तरह की प्रगति दिखती है, एक कहानी सी।
हाँ, एक भावनात्मक लहर सी है। पहले हिस्से में ऐसा लगता है जैसे नींद से जागना हो और प्यार टूटने के बाद के हालात का सामना करना,
जैसे मॉर्निंग सॉन्ग, द कोरियर्स।
हाँ, इनमें अलगाव है, नाकाम शादी है, ठहराव है, मोह भंग है, माहौल ठंडा स्थिर सा लगता है,
फिर तापमान बढ़ता है।
हाँ, दूसरे हिस्से में जैसे गुस्सा फूट पड़ता है और अतीत को उखाड़ फेंकने की कोशिश होती है।
यहाँ डैडी और लेडी लेजरस आती हैं।
बिल्कुल, पिता के मिथक को तोड़ा जाता है, मौत और दोबारा जी उठने पर अपनी ताकत का दावा किया जाता है। यहाँ मुक्ति का रास्ता वो तबाही से होकर गुजरता है या खुद को चोट पहुंचाने के प्रदर्शन से।
जैसे वो कहती हैं, राख से बाहर मैं अपने लाल बालों के साथ उठती हूँ और मैं पुरुषों को हवा की तरह खा जाती हूँ।
हाँ, लेडी लैजरस से ये शिकार से शिकारी बनने का पल है, एक भयानक शक्ति का एहसास
फिर तीसरा हिस्सा आता है।
जो उड़ान और उन्मादी बदलाव का है। एरियल, स्टिंग्स, फीवर 103।
घोड़े के साथ एक हो जाना, खुद को मिटा देने की हद तक ऊंचा उठना, दर्द के जरिए पाक होना।
हाँ, ये एक खतरनाक बेगाम आजादी का एहसास है, जैसा वो एरियल में कहती हैं।
और मैं तीर हूं, ओस जो उड़ती है आत्मघाती, ड्राइव के साथ एक होकर, लाल आंख में, सुबह के कड़ाह में।
उफ, क्या पंक्तियां हैं।
और आखिर में चौथा हिस्सा,
वो एक अजीब सी स्थिरता का है और धुंधले अंत का। बैलून्स, कंट्यूजन, विंटरिंग और खासकर आखिरी कविता एज।
यहां एक भयानक शांति है, मां की ममता और वीरानी का मेल।
और मौत को एक तरह की पूर्णता या सिद्धि के रूप में देखा जाता है। एज की वो पंक्तियां तो सिहरा देती हैं।
स्त्री सिद्ध हो गई है, उसका मृत शरीर उपलब्धि की मुस्कान पहने हैं।
बेहद परेशान करने वाली पंक्तियां हैं ये।
तो ये कोई सीधी लीनियर कहानी नहीं है, बल्कि जज्बात की लहरें हैं। कभी तनाव बढ़ता है, कभी कम होता है, जैसे मन की हालत बदल रही हो।
हाँ, और यहाँ वो मधुमक्खियों वाला पूरा सीक्वेंस भी बहुत अहम है, द बी मीटिंग से विंटरिंग तक।
वो रानी मधुमक्खी के साथ अपनी पहचान जोड़ने का एक और सूत्र है, जो ताकत, सृजन और विनाश सबका प्रतीक है।
बिल्कुल, तो मुख्य विषय क्या उभरते हैं इस सब में से?
सबसे बड़ा विषय तो मेरे ख्याल से बदलाव और पुनर्जन्म का ही है, ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ।
हाँ, मौत और दोबारा जी उठने की छवियां वो बार बार आती हैं, पहचान को मिटाकर दोबारा बनाना।
और बड़े पैमाने पर देखें तो ये औरत की आजादी की लड़ाई है, नारी मुक्ति।
और इसी से जुड़ा है वो दूसरा बड़ा विषय, रचनात्मकता और विनाश का रिश्ता।
ऐसा लगता है कवयित्री के लिए, कला रचने के लिए उस स्व को मिटाना जरूरी है जो समाज मंजूर करता है।
हाँ, वो पारंपरिक अच्छी औरत के खोल को तोड़ना, तभी सच्ची कविता जन्म लेती है। ये असली आवाज और थोपी गई भूमिकाओं का टकराव है।
और तीसरा, पितृसत्ता और औरत का गुस्सा।
बिल्कुल, एरियल को नारीवादी साहित्य में इतना अहम इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें बंधनों के खिलाफ औरत का गुस्सा बहुत खुलकर बिना किसी शर्म के सामने आता है,
खासकर डैडी में।
हाँ, ये उन दमनकारी ताकतों के खिलाफ विद्रोह का काव्य है।
मातृत्व का चित्रण भी वो बहुत अलग है, उसमें वो मीठी भावुकता नहीं है।
हाँ, वो क्रांतिकारी ढंग से ईमानदार है, उसमें गहरा जमीनी प्यार है लेकिन साथ ही बहुत चिंता और घुटन भी।
मॉर्निंग सॉन्ग में दिखता है ये।
हाँ, बच्चे जिंदगी से जुड़ने वाले छोटे हुक हैं, लेकिन मातृत्व का ये प्यार कवयित्री की अपनी तबाही की इच्छा से टकराता है। ये द्वंद्व बहुत मार्मिक है।
और ये सारी जद्दोजहद सिर्फ दिमाग में नहीं है, शरीर पर भी महसूस होती है।
बिल्कुल, शरीर जैसे खुद एक जंग का मैदान है। दर्द, कट, कंट्यूलिन, मर्दों का काबू, दी एप्लीकेंट, कैद और उससे भागने का जरिया, लेडी लैजरस, शरीर ये सब झेलता है।
और प्रकृति?
प्रकृति सिर्फ खूबसूरत नज़ारा नहीं है, वो पनाह भी है और मन की हालत का आईना भी।
मधुमक्खियां, घोड़े, पेड़, मौसम,
ये सब हिंसा, कामुकता, सृजन और विनाश की ताकत से भरे हुए हैं, जीवंत हैं।
एक और परत है, प्रदर्शन बनाम असलियत की।
हाँ, कवयित्री एक ही वक्त में बेहद सच्ची भी लगती है और जैसे जैसे अपनी तकलीफ का प्रदर्शन भी कर रही हो।
ये पहचान की स्थिरता पर गहरे सवाल खड़े करता है।
हाँ, और यहाँ ये भी बता देना शायद ठीक रहेगा कि प्लाथ ने अपनी कविताओं में होलोकॉस्ट की छवियों का इस्तेमाल किया है।
हाँ, यहूदियों के नरसंहार की छवियां, जो काफी विवादास्पद रहा है।
इसे आमतौर पर उनके अपने चरम उत्पीड़न और दर्द को दिखाने के लिए एक शक्तिशाली रूपक की तरह देखा जाता है। मतलब वो अपने दर्द को उस हद तक महसूस कर रही थी,
न कि उस ऐतिहासिक त्रासदी का सीधा बयान। पर यह सवाल जरूर उठता है कि क्या किसी की निजी पीड़ा की तुलना इतने बड़े नरसंहार से करना नैतिक रूप से सही है?
ये एक मुश्किल सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है।
ये सब कहने का अंदाज, ये शैली, ये भी तो प्लाथ की पहचान है।
बिल्कुल, सबसे पहले तो वो मैं का इस्तेमाल, फर्स्ट पर्सन।
हाँ, ये कन्फेशनल कविता की खासियत है। आवाज सीधी, करीबी और बिना किसी फिल्टर के लगती है।
पढ़ने वाले को लगता है जैसे वो कवित्री के दिमाग के अंदर ही पहुंच गया है।
और बिंब विधान, इमेजरी, वो तो कमाल है।
हाँ, ये प्लाथ के शैली का शायद सबसे ताकतवर पहलू है। बिंब मतलब शब्दों से ऐसी तस्वीरें बनाना जो सिर्फ दिमाग में ना बने
बल्कि महसूस हों, शरीर पर असर करें, आंतों में महसूस हों।
हाँ, विजरल। अक्सर ये हिंसक होती हैं, चौंकाने वाली होती हैं, जैसे खून और जख्म,
कट कविता में जैसे,
जो जिंदगी, दर्द और औरत होने के तजुर्बे का निशान है।
या फिर चांद, जो अक्सर एक ठंडी, बेरहम, ताकतवर लेकिन बांझ स्त्री शक्ति का प्रतीक बनकर आता है।
और मधुमक्खियां,
हाँ, वो एक अनुशासित औरतों का समाज भी है, रचनात्मक ताकत भी, लेकिन उनमें डंक मारने और दर्द देने की क्षमता भी है। ये बहुत जटिल प्रतीक है और रंगों का इस्तेमाल भी बहुत सिंबॉलिक है।
हाँ, लाल रंग जिंदगी, खून, गुस्सा, ताकत, सफेद पाकीजगी, खालीपन, मौत, काला अवसाद, अनजाना मन, अचेतन।
और रूपक और उपमाएं, मेटाफर और सिमिली,
वो भी आम नहीं है, चौंकाने वाली हैं। वो असलियत को जैसे मरोड़ कर एक नया, ज्यादा जज्बाती मतलब दे देती हैं।
एरियल में घोड़े की सवारी एक रूहानी उड़ान बन जाती है।
लेडी लैजरस में खुदकुशी की कोशिशें एक कला का प्रदर्शन बन जाती हैं।
आवाज और लय का जादू भी कम नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लाथ का भाषा की ध्वनि पर कमाल का नियंत्रण था। एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, तीखी आवाजें, अंदरूनी तुकबंदी, अनुप्रास,
इन सब का इस्तेमाल वो एक असरदार, लगभग मंत्र जैसा प्रभाव पैदा करने के लिए करती हैं।
डैडी में वो मशहूर ऊ की ध्वनि और बच्चों की कविता जैसी लय, उसका भयानक विषय के साथ टकराव देखिए।
या एरियल की वो सरपट दौड़ती लय और एच की वो धीमी मातम जैसी लय।
और वो बाइबल और मिथकों के हवाले देती हैं, लेडी लैजरस, एथेना वगैरह।
इससे उनके निजी अनुभव को एक ज्यादा बड़ा सार्वभौमिक आयाम मिल जाता है।
यूनिवर्सल।
हाँ,
अच्छा, इन कविताओं को पढ़ना कैसा अनुभव है? भावनात्मक असर क्या होता है?
मेरे लिए तो ये बहुत तीव्र, अक्सर बेचैन कर देने वाला अनुभव होता है। असर फौरन होता है और गहरा होता है।
आप सिर्फ एक दर्शक नहीं रह पाते।
नहीं, आप जैसे उस आवाज के जज्बाती बवंडर में खिंच जाते हैं। कभी घुटन होती है, कभी गुस्सा आता है, कभी गहरा दुख,
और कभी कभी एक अजीब सी डरावनी खूबसूरती का एहसास भी होता है।
हाँ, और जो छाप रह जाती है वो है प्लाथ की कलात्मक ताकत पर हैरत, विस्मय।
ये एक ऐसी आवाज है जो किसी समझौते या आसान तसल्ली से इनकार करती है।
हाँ, ये दिखाती है कि कला में सच्चा होने की कीमत क्या हो सकती है।
और शायद ये हमें अपनी जिंदगी के जो छोटे मोटे समझौते हैं उन पर भी सोचने को मजबूर करती है।
ये खासकर औरत के गुस्से, मातृत्व, शादी, इन सब के बारे में जो बनी बनाई धारणाएं हैं उन्हें चुनौती देती है।
हाँ, ये उन मुश्किल, नापसंद समझे जाने वाले जज्बातों को वैधता देती है जिन्हें खासकर औरतों को दबाना सिखाया जाता है।
ये दिखाती है कि ये शर्मिंदगी की बातें नहीं है, बल्कि ये रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत भी हो सकती हैं।
और ये जिंदगी और कला के रिश्ते पर भी सोचने को मजबूर करती है। ये दिखाती है कि भाषा सिर्फ दुनिया का बयान नहीं करती,
बल्कि हमारी असलियत को गढ़ भी सकती है, शेप कर सकती है।
तो कुल मिलाकर एरियल 20वीं सदी की कविता की सबसे ताकतवर और हाँ, परेशान करने वाली कृतियों में से एक है।
इसकी महानता इसकी बेमिसाल तकनीक और इंसान के मन की गहराइयों की बेबाक पड़ताल में है।
ये कन्फेशनल कविता का शिखर है जिसने खासकर महिला लेखन के लिए नए दरवाजे खोले हैं।
इसकी भाषा का हुनर, कच्ची भावनात्मक ईमानदारी और औरत के स्वा की वो निर्मम खोज,
इसे जरूरी और कभी न भूलने वाली किताब बनाते हैं। ये आसान जवाब या सुकून देने से इनकार करती है।
शायद यही इसकी खूबी है, ये बेचैनी, ये ईमानदारी हमें आज भी उन अंदरूनी लड़ाइयों की याद दिलाती है जिनसे हम सब कहीं ना कहीं जूझते हैं।
भले ही हमारे हालात और रूप अलग हों, वो कोर संघर्ष शायद वही रहता है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।